अर्पण रेडियो की प्रस्तुति
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज।
गजर ने किया है इशारा।
नमस्कार दोस्तों, मैं अलंकृता आ गई हूँ लेकर बिलासपुरियंस की आवाज। कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है और शायद सर्दी का असर आप लोगों को मेरी आवाज में झलक ही रहा होगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैं बिलासपुर में इधर उधर घूमते रहती हूँ और जो भी कुछ मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपनी रिकॉर्डिंग की पेटी में बंद कर ले आती हूँ आप सभी के लिए। तो इस बार मैं जा पहुंची वनमाली सृजन पीठ के कवि सम्मेलन में और वहां मेरी मुलाकात हुई कुछ कवियों से और मुझे लगा कि इन कवियों की कविताएं और इनकी बातचीत हमारे श्रोता कवियों को और अन्य श्रोताओं को बहुत भाएंगे। तो बस फिर क्या था, मैंने उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया और ले आई हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए सुनते हैं कि मेरी सबसे पहले बातचीत किन कवि से हुई।
मेरा नाम रचना पाल है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, मगर यहाँ पर हम लोग ही कार्य क्षेत्र है एनटीपीसी में, तो हम लोग यही सीपत में रहते हैं।
अच्छा
जी
जी मैम, तो आप
काव्य लिखती हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से उसे प्रस्तुत भी करती हैं। मैं भी आपकी कविता सुन रही थी, तो हमसे भी कुछ अपनी पसंदीदा कविता शेयर कीजिए।
जी जी,
मैं एक नारीवादी लेखक हूँ और मेरी कविताओं का जो उद्देश्य है वो यही है कि महिलाओं का उत्थान हो और उन तक वो कविताएँ पहुँचें। तो मैंने एक कविता टीवी पर सुनाई है, मैं उसी की पंक्तियाँ सुनाऊँगी आपको कि जब जब तुम्हारी कहानियाँ लिखी जाएंगी यकीन मानो मेरा स्याही का रंग नीला नहीं लाल निकलेगा। तुम देखना लहू बहेगा पन्नों पर, तुम देखना लहू बहेगा पन्नों पर और तुम्हारे आंसुओं के सैलाब में वो पितृसत्ता की इमारतें ढह जाएंगी। तुम्हारी चीखें इस बहरे हो चुके सिस्टम को जगाएंगी और बेशक वो लकीरें बनाएंगे, और बेशक वो लकीरें बनाएंगे, तुम मिटाते चलना वो फतवे सुनाएंगे, तुम हटाते चलना। गिरना संभलना उठना चलना, फिर गिरना संभलना उठना, मगर चलना तुम रुकना मत, तुम रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे हौसले की कस्में वो आने वाली पीढ़ियां खाएंगी जब जब तुम्हारी कहानियां लिखी जाएंगी। तुम्हारी खूबसूरती को नापने के ये छोटे पैमाने हैं, तुम्हारी खूबसूरती को नापने के ये छोटे पैमाने हैं, अरे तुम्हें बरगलाने के ये सारे बहाने हैं। अपने होने के कुछ बड़े मायने लिखना, अपने होने के कुछ बड़े मायने लिखना और जब वो घूरे तुम्हें तुम चंडी दिखना, तुम्हारे आँखों के काजल में उनकी झूठी इबारतें कालिक हो जाएंगी जब जब तुम्हारी कहानियाँ लिखी जाएंगी, जब जब तुम्हारी कहानियाँ लिखी जाएंगी। थैंक यू।
बहुत सुंदर रचना है मैम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि आप कितने सालों से लिख रही हैं।
मैं बेसिकली एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग में और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो लिटरेचर साथ साथ चलता रहा है हमेशा। मेरे दादाजी जो थे वो एक शिक्षक थे, तो बस घर में एक माहौल था, मैं लिखती थी लेकिन कभी इसको प्रोफेशनली फॉलो नहीं किया। अभी कोविड के टाइम से मुझे लगा कि कुछ लोगों ने कहा कि आप अच्छा लिख रहे हो, तो मैंने उसको थोड़ा विधिवत तरीके से लिखना शुरू किया है। तो आप कह सकते हैं कि 2-3 साल हुए मुझे अभी लिखते हुए।
और मैम, आपने बताया कि साहित्य से आपका जुड़ाव रहा है काफ़ी समय से, पर लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
मुझे लगता है कि मुझे ये प्रेरणा मेरे दादाजी से ही मिली है, क्योंकि ये बहुत ही निष्पक्ष विचारों का माहौल घर में रहा है और एक जो कहने की आज़ादी होती है वो हमेशा से ही रही है घर में, और ऐसे ही सिखाया गया है कि अगर गलत है तो आप उसके खिलाफ बोलें। अब हर कोई सरहद पे जाकर तो बंदूक उठा नहीं सकता, तो हम लेखकों के पास वो बंदूक है, वो कलम के रूप में, जिसे हम आग निकाल सकते हैं और न्याय की बात कर सकते हैं। तो बस मेरा वही उद्देश्य है कि मैं अपनी कलम को सही दिशा में ले जाऊं और लोगों के हक के लिए लिखूं।
मैम, बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके और प्रस्तुत करने का ढंग भी आपका बहुत सुंदर है। मैं थोड़ी सी ग्रीडी होके, लालची होके आपसे एक और मांग करना चाहती हूँ कि आप कोई और अपनी पसंदीदा कविता हमें बताइए।
हाँ, मैं नारीवादी लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा लड़कियों के ही उसमें लिखती हूँ। मैं 2-3 पंक्तियाँ आपको सुनाऊँगी कि खंजर नहीं है हमारे पास, हम तलवारें नहीं चलाएंगे, ये शब्द के तीर हैं, तुम्हें चीर कर जाएंगे और रक्त नहीं बहेगा, आवाज भी नहीं आएगी, ये चुप रहकर शोर करेंगे, भीषण वर्षा घनघोर करेंगे, तुम्हारे सोए हुए अंतर मन को जगाएंगे। खंजर नहीं है हमारे पास, हम तलवारें नहीं चलाएंगे, ये टीवी पर बैठकर बराबरी और हिस्सेदारी की झूठी बातों का क्या फायदा, उन कैंडल मार्च की गमगीन रातों का क्या फायदा, जब बेटियां तुम्हारी सोनी सड़कों पर डरती हैं, चार कदम चलती हैं फिर पीछे मुड़ती हैं, कहीं अखाड़ों में सताई जाती हैं, कहीं खेतों में चुपके से जलाई जाती हैं, कहीं सड़कों पर नंगी घुमाई जाती हैं, और तुम गुनहगारों को राज तिलक लगाते हो और तुम गुनहगारों को राज तिलक लगाते हो, जाति धर्म के नाम पर उन्हें बचाते हो, फिर आज़ादी का मतलब हमको समझाते हो। किस आज़ादी की बातें करते हो तुम? हम खुद लिखेंगे क्रांति, हम खुद लिखेंगे क्रांति, अब घूरने दो उन सस्ती आँखों को, हम भी नजरें नहीं झुकाएंगे, माँ दुर्गा की नस्लें हैं हम, आ जाने दो दानव को, हम भी चंडी बन जाएंगे, अब चुप नहीं रहेंगे, हम नहीं सहेंगे, आंखों से नीर नहीं अंगार बहाएंगे, खंजर नहीं है हमारे पास, हम तलवारें नहीं चलाएंगे, ये शब्द के तीर हैं, तुम्हें चीर कर जाएंगे। धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर कविता मैम, बहुत ही सुंदर, मतलब एक एक शब्द में फील कर पा रही थी।
मुझे लगता है कि वो बात जो लोग नहीं कह पाते हैं, मुझे लगता है मुझे कहनी चाहिए, मैं कहती हूँ।
बिल्कुल मैम, वो मैं देख पा रही हूँ, मैं भी ऐसे थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये दिक्कत है कि मैं याद नहीं कर पाती हूँ अपनी लिखी हुई कविताएं।
कविता का ना मेन जो है एलिमेंट वो यही है, अगर आप लिख रहे हो, आप अगर फील करोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, आप सोचोगे तो आप लिख लोगे, जब वो कविता आपके अंदर आ जाएगी ना, यू विल लाइक यू विल एम्बेड इट, तब आपको वो अपने आप आत्मसात हो जाएगी, आपको याद करने के लिए। मैंने याद की नहीं है, वो लिखते लिखते इतना इंटेंसिटी उसको लिखा है ना, वो सारे सीन्स कि वो कैसे लखीमपुर में लड़कियां जलाई जा रही हैं, खेतों पर नचाई जा रही है मणिपुर में, वो आप लिखोगे तो आपको एज इट इज वो आपको याद हो जाएगी, आपको उसको याद करना नहीं पड़ेगा।
मैम वो आप जैसे जैसे बोल रही थी ना, वो नजारे मेरे सामने आ रहे थे,
तो बस वही है, जब आप लिख रहे हैं और आप वैसे ही लिखिए, एकदम ऐसे तो ना डूब कर लिखिए, आप पहले उस चीज को सोचिए और फिर लिखिए, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, विल गेट इन टू इट, आपको अपने आप ही वो याद हो जाएगी, और वो इंटेंसिटी जब आप बोलेंगे तो वो इंटेंसिटी आपके चेहरे पर आपके हाव भाव में दिखाई देगी।
मैम एक और सवाल आपसे कि जो बच्चे अभी लिखना चालू कर रहे हैं या जिनका रुझान हो रहा है साहित्य के प्रति, उनको आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी सभी नए बच्चों को कि आप लिखने से पहले बहुत पढ़ें, पढ़ना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम नए बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो लिख रहे हैं, हमने किसी चार कवियों को सुन लिया या चार कवि सम्मेलनों में या वायरल हम लोगों ने कुछ वीडियोस देख लिया और हम लिखने लगे, जो सबसे गलत तरीका है मेरे हिसाब से लिखने का। आपके लिखने का देखिए, एक शिक्षा और एक कविताएं या फिर साहित्य, ये जॉब्स नहीं है, दे आर नॉट नॉर्मल जॉब्स, ये एक उत्तरदायित्व है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को, और उस तैयारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट से इतर किताबें पढ़िए, अपने सब्जेक्ट से पढ़िए, आप साइंस पढ़ेंगे तो भी आप अच्छा लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतिहास ही पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे, आप साइंस पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक साइंटिफिक टेंपर डेवलप होगा और आप और अच्छा लिख पाएंगे, तो आप लिखिए लेकिन पढ़िए, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
शुक्रिया मैम।
इसके बाद मेरी मुलाकात हुई सनीश जी से, जिनकी पुस्तक मुझ में दिल्ली बसता है का हाल ही में विमोचन हुआ है, तो चलिए सुनते हैं सनीश जी की बातें।
नमस्कार, मेरा नाम सनीश है और मैंने हाल ही में एक अपना कहानी संग्रह मुझ में दिल्ली बसता है लिखा है, मैं यहीं बिलासपुर में रहता हूँ।
अच्छा सर, अपने कहानी संग्रह के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
मुझ में दिल्ली बसता है ये प्रेम को लेकर लिखी गई कहानियाँ हैं, इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं जो अलग अलग विषयों पे हैं, और जो मध्यम वर्ग का जीवन संघर्ष है, युवा मन के भीतर उमड़ने वाली भावनाएं हैं, उसको कहानी के रूप में पिरोने की कोशिश की गई है, और कहानियों में कई परतें हैं, कई फलक हैं, जैसे पाठक उसमें उतरता है तो रूबरू होते जाता है और उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कहानी के किसी पात्र से वो भी जुड़ा हुआ है।
अच्छा जी सर, तो ये कहानियाँ लिखने की आपको बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली?
मेरे जीवन में बड़ा समय भ्रमण में गुजरा है, मैं पहले फौज में काम करता था, तो फौज में रहते हुए मैं देश के अलग अलग हिस्सों में मैंने काम किया, मैं
फौज में काम कर
जी है? जी, तो मैं लगभग 8 साल भारतीय वायुसेना में काम किया था, तो मैं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व भारत तक और बड़े शहरों तक रहने जाने मिलने और घूमने का मौका मिला, तो इस दरमियान में जो लोग मेरे जीवन में आते गए जुड़ते गए तो अपने साथ वो अनुभव की विरासत भी लेके आए, तो उन तमाम अनुभवों को सुनते गाते मेरे भीतर कुछ इच्छाएं आई, मेरे भीतर कुछ सृजित करने का मन हुआ, तो ये कहानियां अंत में उन्हीं सब चीजों का सार है, उन लोगों से प्रभावित कहानियां हैं जो मेरे जीवन में आते गए।
सर जैसे आपने बताया कि आप फौज में थे और देखते देखते आपको अनुभव हुआ, तो सर फौज छोड़कर आपका साहित्य की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ सर?
बल्कि ये है कि साहित्य की तरफ झुकाव हुआ तो फिर सेना से फिर मैं इधर बाहर सिविल की लाइफ में आया, क्योंकि अच्छा। जी मैं युवा था जब मैं सेना में काम करता था और कुछ साल करने के बाद फिर धीरे धीरे सिविल लाइफ की ओर अवसर मिले तो मैं उधर से इस तरफ आ गया। और सेना की कहानियों की भी झलक आप इस कथा संग्रह में पाएंगे, वहाँ के परिवेश, वहाँ की चीज़ों के बारे में भी को लेकर भी कुछ एक कहानियाँ हैं। तो ये एक नया फलक है हिंदी साहित्य के लिए, सेना फौज की कहानियाँ आमतौर पर लोग सुनते हैं, तो आप लोग पढ़ेंगे तो शायद वो एक अलग दिलचस्पी पैदा करेंगे आप लोग के लिए।
बिल्कुल सर, मतलब हम कह सकते हैं कि जितना आप सारी जगह ट्रेवल किए हैं और जितना आपका एक्सपीरियंस है सबका साथ इन कहानियों में है कहीं ना कहीं।
हाँ जी बिल्कुल, आप एक तरह से कह सकते हैं।
सर कहानियों के अलावा आप कुछ काव्यांश वगैरह भी लिखते हैं?
नहीं, कविताएं नहीं लिख पाता हूँ, पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ने का शौक है, लोगों से मिलने का शौक है, लोगों को जानने का शौक है, घूमने का शौक है, और फिर इनसे जो भीतर बैठता है उसको लिखने का शौक।
तो सर जब आप लिखने बैठते हैं, हम बहुत बार देखते हैं कि आजकल के जो युवा होते हैं ये भी या तो जब दिल टूट जाता है तब इनके अंदर का कवि जाग उठता है, तो आपको लिखने की इंस्पिरेशन फिर और कहाँ से आती है?
देखिए ये बात तो सही है कि जो साहित्य का लेखन है वो भावनाओं का वो उमड़ना ही है एक तरह से। तो जैसे मैं इसके तुलना करता हूँ कि जैसे सांप व्याघ्र होता है अपनी केचुली को उतारने के लिए, जब तक उसको केचुली को नहीं उतारता है तब तक उसे चैन नहीं मिलता, तो इस तरह एक लेखक के भीतर भी भावनाएं इतनी भर जाती हैं, अनुभव इतने आ जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं कि फिर मेरे प्रसंग में ऐसा है कि फिर आदमी व्याघ्र होता है कि नहीं इसे लिखना होगा, और लिखने के बाद एक आत्मीय आनंद का भी अनुभव होता है। तो मेरे लिए लेखन प्रक्रिया कुछ इस तरह से है।
जी सर, सर आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है और कुछ उनका पढ़ा हुआ चीज जो आप हमें बताना चाहें?
निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद है, और बाकी मैंने विश्व साहित्य में चेखो की कहानियां पढ़ी हैं, इसलिए क्योंकि ये कहानियां बहुत सरल है, इनकी भाषा बहुत सरल है, और ये हिंदी में प्रेमचंद एक विश्व स्तरीय लेखक है। तो किसी को पढ़ना है हिंदी साहित्य को तो उसे प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, और एक उभरते लेखक को तो जरूर ही पढ़ना चाहिए प्रेमचंद को, क्योंकि कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेमचंद की कहानियों में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है।
मुझे भी याद है इनकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मेरे फटे जूते।
जी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, और जैसे दुनिया भर में चेखो की चर्चा जितनी है मुझे लगता है प्रेमचंद की भी उतनी ही चर्चा होनी चाहिए। आप चेखो की कहानियां पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि आप हिंदी के प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली है। तो हिंदी साहित्य में कई ऐसे हैं लेखक जिनको और पढ़े लोग तो वो विश्व स्तर पर और उन्हें प्रसिद्धि मिल सकेगी, तो जरूर इस दिशा में युवाओं को प्रयास करना चाहिए कि वो हिंदी के लेखकों को पढ़ें, आसपास की चीज़ों को पढ़ें, बल्कि पढ़ें, क्योंकि पढ़ना थोड़ा कम हो गया है युवाओं के बीच में, मैं अनुभव करता हूँ। तो जी हिंदी साहित्य को पढ़ा जा सकता है, उसमें भी बहुत स्तरीय चीजें लिखी जा रही हैं।
जी सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी नई बुक का लॉन्च हुआ है।
थैंक यू।
इनसे बात करने के बाद मैं जहाँ पहुंची डॉक्टर गंगाधर पटेल पुष्कर जी के पास, और इनसे मैंने क्या बात की चलिए सुनाती हूँ आपको।
मैं डॉक्टर गंगाधर पुष्कर, और मैं व्यंग विधा पर पीएचडी किया हूँ, और व्यंग का मैं लेखन करता हूँ।
जी सर, ये व्यंग लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई?
देखिए जब मैं व्यंग पर पीएचडी किया, और अभी परसाई जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है, और मेरे उत्प्रेरक या मेरे को प्रेरणा परसाई जी के व्यंगों से प्राप्त हुआ।
तो सर साहित्य के प्रति आपका झुकाव कब से है?
मैं हिंदी साहित्य में ही एमए किया हूँ, और हिंदी साहित्य में एमए करने के कारण साहित्य के पठन पाठन लेखन में अभिरुचि मुझको विद्यार्थी जीवन से भी रहा है, और मेरी लगभग 5 कृतियाँ भी आ चुकी हैं, और मैं व्यंग में लिखता हूँ। मेरा पहला व्यंग संकलन आओ कीचड़ उछालें, फिर गुमशुदा बसंत, सपनों का इंद्रधनुष, पुष्कर के दोहे, ये सब हैं। जी
अरे वाह सर, व्यंग लिखना तो मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन काम है।
देखिए व्यंग लिखना कठिन नहीं है यदि आप अपने आसपास और इर्द गिर्द के परिवेश को देखें, आम जनों की पीड़ाओं को समझें, वर्तमान का बोध करें और जो समय में जो व्याप्त विसंगतियां हैं उसको पकड़ें और उसके अनुकूल लेखन करें, तो व्यंग कहीं हमें ढूंढना नहीं पड़ता अपितु हमारे इर्द गिर्द है। तो व्यंग लेखन एक स्वाभाविक और चिंतन प्रधान लेखन है जिसमें करुणा का भाव अंतर्निहित रहता है।
तो सर, जब आपने लिखना चालू किया उसके पहले आप कई सारे कवियों को और कई सारी चीजों को पढ़ते होंगे, तो उनमें से सबसे पसंदीदा आपके कवि लेखक कौन?
देखिए, व्यंग का जो आदि पुरुष है वो कबीर हैं। कबीर के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं भारतेंदु युग में आते हैं, उसके बाद हमारे निराला जी हैं, हमारे प्रेमचंद जी हैं। किसी ने कहा भी है कि यदि भारत के स्वाधीनता के पूर्व का परिवेश जानना हो तो प्रेमचंद का कथा साहित्य, और स्वाधीनता के बाद का परिवेश जानना हो आपको तो परसाई के व्यंग से गुजरना होता है। तो हमने चूंकि उन पर शोध किया है और परसाई जी के व्यंग पर सामाजिक चेतना विषय पर हमारा शोध ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है, तो हमारे व्यंग के पुरोधा व्यंग सम्राट परसाई जी हैं।
सर, आपका लिखा हुआ कोई व्यंग जो आपका पसंदीदा हो या जो आपके मन के बहुत करीब हो वो हमें बताइए।
देखिए, मैं सुनाऊं क्या व्यंग आपको?
हाँ सर, बिल्कुल।
जैसे लिप्सा है मधुबावरी, रक्ती माल सहेज, लेकिन है मधुमेह को मीठा से परहेज। भाग भाग कर थक गए साधु संत महन, पकड़ फिरे परछाइयां चाहे दुख का अंत। मधुवन से गुम हो गया अपना माखन चोर, पाकी एक जहाज का ताक रहा है भोर। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं व्यंग की, जिसमें व्यंग जैसे अभी वर्तमान में एक विवाद चल रहा था आप लोगों के सामने में, इंडिया और भारत का, नाम देसी इंडिया भारत देसी नाम, मतलब तो एक है पत्र कहो या पात, है ना, इसका मतलब तो एक ही है। इसमें राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक विद्वेष या राजनीतिक द्वंद छिपा हुआ है और इसको लेकर हर आदमी अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं, जबकि इस पर कोई बहुत विवाद खड़े करने की बात नहीं है जी। तो ऐसे जो वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको अपन पढ़ते हैं। व्यंग के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है, व्यंग के लिए पढ़कर और जिस पर आप व्यंग लिखना चाहते हैं उसके मनोवृत्ति को पकड़कर और उस मनोवृत्ति को अपने विशिष्ट शैली में ढालकर सामाजिक चेतना से उत्प्रोत होकर व्यंग लिखें और आम जनता की पीड़ा को उस पर व्यक्त करें और आम जनों से जुड़ें, तब वो व्यंग लिखना सार्थक है।
जी सर। सर, और कोई आपका व्यंग हमें सुनाना चाहे तो?
जी, एक मैं सुना रहा हूँ। गांधी तेरे देश में जुल्हा तार तार नंगा है, धर्म के नाम पर दंगा है, फिर भी तेरा चित्र 100 के नोट पे चंगा है। थाने के पुलिसिया इंसाफ पर सलीब सा टंगा है, बापू तेरे 3 बंदर कहीं खो गए हैं, सुनते हैं इन दिनों की वो नेता हो गए हैं, बुरा करते हैं बुरा देखते हैं, और बापू हम बहुत कुछ सहते हैं, बापू हम बहुत कुछ सहते हैं। तो आज के परिदृश्य में ऐसे ही हम लोग व्यंग रचना लिखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि व्यंग के माध्यम से जो विसंगत स्थितियां हैं उससे जन चेतना हो, लोगों को प्रशिक्षित करें, लोग अपने अधिकार कर्तव्य पर जागृत हों, राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक जो संकीर्णता है उससे उबर सकें और देश में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राजनीतिक परिवेश का निर्माण हो।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनका व्यंग लेखन तो मुझे बड़ा ही भा गया, और इतने सारे कवियों की बातें आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी ही लगी होगी। इसके बाद मेरी मुलाकात हुई सतीश जी से, जो कि बनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस कवि उत्सव का आयोजन किया था। तो चलिए सुनते हैं सतीश जी की बातें।
मैं सतीश जायसवाल, वनमाली सृजन पीठ बिलासपुर का अध्यक्ष। वनमाली सृजन पीठ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलाकर 3 स्थानों पर है। 2 है मध्य प्रदेश में, भोपाल और खंडवा, और एक ये बिलासपुर का जो है छत्तीसगढ़ के लिए है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के साथ हम संबद्ध हैं, लेकिन हमारी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से चलती हैं। साहित्य और संस्कृति से संबंधित आयोजन यहाँ होते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों की प्रतिभागिता हो और उनको बाहर की दुनिया देखने मिले। बाहर के लोग हमारे यहाँ आए, हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका पता उनको मिले और दोनों एक दूसरे से परिचित हो सकें, तभी साहित्य की समझ हमारी विकसित होगी। ये हमारा उद्देश्य होता है। साहित्य और संस्कृति दो अलग अलग विधाएं नहीं, एक ही जाति की दो शाखाएं मानता हूं मैं, जिसमें साहित्य के अतिरिक्त कला भी है। कला के विभिन्न रूप हैं, जिसमें चित्रकला हो सकती है, नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, लोक गीत लोक संगीत भी हो सकता है, लोक भाषाएं भी हो सकती हैं। धीरे धीरे हम सब पर काम कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि ये दोनों भी एक दूसरे से परिचित हों, एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे के साथ साथ चलें। कुछ ऐसा हुआ कि साहित्य अपने आप को अकेला मानने लगा था और वो कहानी और कविताओं तक सिमट गया था, उपन्यास तक बढ़ा, कविताएं थी तो महाकाव्य तक बढ़ा, लेकिन उनके पास कला की विधाओं की जानकारी हमको नहीं मिलती है। बिल्कुल इसका उल्टा हम देखें, साहित्य के अतिरिक्त हम कलाओं के जिन शाखाओं की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ भी साहित्य के साथ परिचय नहीं मिलता है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ परिचित होना चाहिए और खासतौर पर साहित्य में इनका उल्लेख होना चाहिए। हमारे दैनंदिन जीवन के अतिरिक्त भी हमारी समझ, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, वो हमारे साहित्य के जरिए हमारे पढ़ने वालों तक पहुँचना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है।
सर, ये जो वनमाली सृजन पीठ है, इसकी शुरुआत कब हुई थी?
बिलासपुर का वनमाली सृजन पीठ अब 6 वर्ष पुराना हो गया। बीच में कोविड की वजह से थोड़ी गतिविधियां हमारी स्थगित रहीं, हम फिर से वापस सक्रिय हुए हैं और अब पूरी गति के साथ चल रहे हैं। आज का यह आयोजन सोच समझ कर रखा गया है। आज 30 तारीख है दिसंबर महीने की, 2023 का विदा समय है, इस वर्ष का विदाई है और साथ में नए वर्ष का स्वागत भी है। विदाई और स्वागत हमने दोनों इसमें जोड़ा है। अक्सर ये होता है कि जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं या जो ऊंचा अपने आप को मानते हैं, साहित्य में सचमुच में जो ऊंचा है और जो स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं लिखने की, उन दोनों के बीच में एक फासला है। ये अपने को छोटा मानते हैं और जो अच्छा लिख रहे हैं, जिनको बड़ा संसार मिल गया है, वो अपने को बड़ा मानते हैं। इसकी वजह से साहित्य में काम करने वालों के आपस में भेदभाव बन रहा था, शिकायतें भी थी इन लोगों को जो स्थानीय स्तर पर रहकर काम कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि उनकी शिकायतें कुछ दूर कर सकें और इसलिए आज का ये आयोजन हमने पूरी तरह से स्थानीय रचनाकारों पर केंद्रित किया है और रचना की दोनों तीनों चारों विधाओं को इसमें शामिल किया है। कविता है, गीत है, नवगीत है, गजल है, इसके अतिरिक्त कहानी भी हमने इसमें जोड़ी है, लेकिन कहानी का पाठ नहीं किया है। कविताओं का पाठ है, गीत गजल का पाठ है, नवगीत का पाठ किया है, लेकिन कहानी का पाठ नहीं किया है। इन दिनों कहानी कम लिखी जा रही है। अभी एक अच्छा कहानी संकलन मेरे हाथ में आया तो अभी हमने उसका विमोचन किया है, आगे उस पर हम चर्चा करेंगे।
अच्छा सर, ये जो वनमाली सृजन पीठ है, की शुरुआत जब आप लोगों ने की तो आप लोगों के दिमाग में क्या मुख्य उद्देश्य था कि जिसके लिए ये बनाया गया था?
शुरू में मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ था कि लोगों के भीतर साहित्य के प्रति लगाव पैदा करें, भाषा के प्रति लगाव पैदा करें। किसी भी भाषा का सर्वश्रेष्ठ उसके साहित्य में मिलता है, तो हमने कोशिश की कि हिंदी में या छत्तीसगढ़ी में जो साहित्य लिखा जा रहा है उससे भी परिचय हो, हमारा भी, पढ़ने वालों का भी और सुनने वालों का भी।
जी सर।
और मैंने बीच में कहा कलाओं के साथ भी हमारे संपर्क होने चाहिए और कलाओं को हमारे विषय में जानना चाहिए, हम वो भी कर रहे हैं, कोशिश की है, ये भी हमारे लक्ष्य का एक हिस्सा था। अपने बीच में हम इन सारी विधाओं को संवेदना के स्तर पर ले रहे हैं। जब तक हमारे बीच में कला के प्रति संवेदना नहीं होगी, साहित्य के प्रति संवेदना नहीं होगी, वो केवल लिखा जाएगा, केवल चित्रित किया जाएगा, केवल परफॉर्म किया जाएगा, हम भीतर से नहीं कर पाएंगे। हमको हमारी व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जिसको मैं संवेदना की बात कर रहा हूँ, ये हमारा था।
सर, तो 6 सालों से ये संगठन काम कर रहा है, ये जो कवि सम्मेलन है ये भी 6 सालों से लगत होते आ रहा है?
ये हम बदलते रहते, हमने कोई ऐसा क्रम इसके लिए निर्धारित नहीं कर रखा है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है। कोई विशेष अवसर होगा या कोई विशेष चीज नजर आ जाएगी, हमारी जैसी सुविधा होगी, लोगों के जैसी मांग होगी, सब देखते हुए समय समय पर हमें करते रहते हैं, हमारा व्यवसाय नहीं है ये, लगाव है हमारा।
तो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे साहित्य के प्रति लोग और जागरूक हों और उससे जुड़ पाए।
हाँ यही है, कोशिश करते हैं कि उनके बीच में जाकर बैठे और बातचीत करें उनके साथ। हमने ये भी किया है, स्कूल गोइंग बच्चों को भी लेकर हमने काम किया है, जो स्कूल से निकल कर जा रहे हैं कॉलेज में जाएंगे, अपने साथ साहित्य की समझ लेकर जाएंगे। तो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं व्यापक समाज को, साहित्य के साथ, कला के साथ, संस्कृति के साथ जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं।
शुक्रिया सर।
सर ने तो बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से साहित्य समाज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इससे जुड़ाव भी बहुत ही जरूरी है, और युवा पीढ़ी और साहित्य का संबंध बना रहे इसके लिए कुछ ना कुछ नए आयोजन करते रहते हैं। बस यही था आज का गजर कार्यक्रम। कैसा लगा आपको आज का गजर कार्यक्रम जरूर बताइएगा, और इतने सारी कवियों की बातें सुनकर आप भी कुछ लिखने की कोशिश कीजिए और लिख भेजिएगा उसे अरपा रेडियो को। चिट्ठी आई है मेल के माध्यम से या फिर अरपा रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर 9179132444। तो अब वक्त हो चुका है अलंकृता का आप सभी से विदा लेने का, फिर मिलूंगी आपसे बिलासपुर की कुछ और नई और दिलचस्प बातें लेकर। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए अरपा रेडियो। नमस्कार।
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज,
ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।